एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात कर रहे हैं, एकहार्ट टॉले की अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस। ये उन किताबों में से है जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं।
बिल्कुल, और ये सवाल तो शायद आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं ना।
हाँ
मतलब हम सब महसूस करते हैं वो लगातार का तनाव, भाग दौड़ और कभी कभी तो आपसी झगड़े भी, चाहे घर में हो या दुनिया में।
सही बात है।
और ये किताब कहती है कि इन सब का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर ही है, हमारे अहंकार में, जिसे ईगो कहते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि टॉले के विचार क्या हैं और खासकर हमारे जीवन के रोल्स यानी भूमिकाओं और गोल्स यानी लक्ष्यों के बारे में वो क्या कहते हैं, कैसे हम ज्यादा शांत, ज्यादा सार्थक जीवन जी सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करें। एकहार्ट टॉले ये कोई टिपिकल गुरु या प्रोफेसर तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, और शायद यही बात उन्हें खास बनाती है। एकहार्ट टॉले जर्मनी में जन्मे थे, अभी कनाडा में रहते हैं, और वो किसी खास धर्म या पंथ से जुड़े हुए नहीं हैं।
अच्छा।
हाँ, लेकिन उनकी बातें दुनिया भर की जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जैसे जैन है, सूफी मत, हिंदू धर्म, ईसाइयत, उन सबके सार से कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। उनकी अपनी कहानी भी काफी नाटकीय है। करीब 29 साल के थे तब तक वो बहुत गहरे डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी थी, जिंदगी एकदम बेकार लगती थी उन्हें।
और फिर वो कहते हैं कि एक रात अचानक सब बदल गया।
जी बिल्कुल, एक रात उन्हें बहुत ही गहरा आंतरिक बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो दुखी, परेशान मैं तो था वो पूरी तरह खत्म हो गया,
गायब।
हाँ, और उसकी जगह एक गहरी शांति, एक मौन आ गया। और यही जो उनका अपना अनुभव था वही उनकी टीचिंग का आधार बना, कोई किताबी ज्ञान नहीं।
अच्छा।
उनकी पहली किताब थी द पावर ऑफ नाउ, वो तो बहुत ही फेमस हुई, और ए न्यू अर्थ उसी समझ को और आगे ले जाती है। और उनकी भाषा बहुत सीधी है, सिंपल है, आजकल की भाषा है।
तो अब आते हैं इस किताब पर, अ न्यू अर्थ। इसका इसका मेन आइडिया क्या है? जो सामग्री हमारे पास है उससे क्या समझ आता है?
देखिए, सबसे सबसे बुनियादी बात जो टोले कहते हैं वो ये है कि इंसान का जो दुख है, चाहे वो गुस्सा हो, जलन, डर, या बस वो एक खालीपन का एहसास,
हाँ, असंतोष।
हाँ असंतोष, उसका जो मूल कारण है वो है हमारा अहंकार, ईगो। ये अहंकार क्या है? ये वो झूठी मैं की भावना है जो हमने बना ली है,
कैसे?
अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी चीजों से, जैसे मेरा घर, मेरा पद, अपनी सामाजिक भूमिकाओं से, अपनी पूरी कहानी से खुद को जोड़कर हम सोचते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं।
अच्छा। और ये जो झूठा मैं है ये हमें हमेशा इनसिक्योर फील कराता है, दूसरों से कंपेयर करवाता है।
बिल्कुल, और हमेशा कुछ और पाने, कुछ और बनने की एक एक दौड़ में लगाए रखता है। और सबसे बड़ी बात ये हमें अभी इस पल से दूर ले जाता है, या तो हम अतीत में होते हैं या भविष्य में। तो टोले का तर्क ये है कि मानवता ना अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हमें इस अहंकार वाली चेतना से ऊपर उठना ही होगा। ये सिर्फ अपने सुकून के लिए जरूरी नहीं है,
बल्कि
दुनिया के लिए भी। अगर हमें एक बेहतर, एक सस्टेनेबल दुनिया बनानी है तो ये बदलाव जरूरी है। और ये किताब हमें इसी अहंकार को पहचानने और उससे अपनी पहचान तोड़ने का रास्ता दिखाती है। और चाबी क्या है?
क्या?
वर्तमान क्षण की जागरूकता, जिसे वो प्रेजेंस कहते हैं।
प्रेजेंस,
ठीक है,
तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये अहंकार और इससे निकलने का रास्ता, किताब के जो मुख्य विचार हैं अगर उनको थोड़ा समझें। अहंकार से ही शुरू करते हैं, ये काम कैसे करता है?
देखिए, अहंकार का मूल काम है पहचान बनाना, आइडेंटिफिकेशन,
पहचान बनाना।
हाँ, वो खुद को चीजों से जोड़ता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, और फिर इन चीजों के आधार पर खुद को बड़ा या छोटा महसूस करता
है ना?
हाँ, फिर वो विचारों और मान्यताओं से भी खुद को जोड़ता है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी पार्टी ही अच्छी है।
ओ हाँ, ये तो बहुत होता है।
और इसी से फिर वो बहस, झगड़े, दूसरों को गलत साबित करने की इच्छा, ये सब पैदा होता है।
और ये पहचान सिर्फ बाहर की चीजों या विचारों तक ही नहीं रहती, मतलब शरीर से या हम जो काम करते हैं उससे नहीं जुड़ जाती है।
बिल्कुल, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, या कभी कभी तो मैं एक पीड़ित हूँ। हम अपनी इन भूमिकाओं, इन रोल्स में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम सिर्फ ये रोल नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं।
हाँ, मतलब रोल निभाना तो जरूरी है, पर जब हम खुद को पूरी तरह वही मान लेते हैं
तब प्रॉब्लम है,
तब गड़बड़ होती है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, पेन बॉडी, पीड़ा शरीर।
पीड़ा शरीर, ये क्या है?
ये है हमारे अतीत के वो सारे भावनात्मक दुख, दर्द, गुस्सा, उदासी, डर, गिल्ट, जिन्हें हमने उस वक्त पूरी तरह महसूस नहीं किया या जाने नहीं दिया, वो सब हमारे अंदर इकट्ठा हो गया है, एक तरह के एनर्जी फील्ड की तरह।
अच्छा, एक बोझ की तरह।
हाँ, कह सकते हैं। और ये पीड़ा शरीर ना समय समय पर जाग जाता है, एक्टिवेट हो जाता है।
हा?
कैसे?
हाँ,
किसी भी छोटी सी बात से, कोई कुछ कह दे या कुछ याद आ जाए, और फिर ये हमें पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेता है।
ओ।
और फिर हम वही पुरानी नेगेटिव फीलिंग्स, वही पुराने रिएक्शंस दोहराते रहते हैं। रिश्तों में ये खास तौर पे नजर आता है,
जब दो लोगों की पेन बॉडी एक दूसरे को उकसाती हैं।
हाँ।
और फिर झगड़ा बढ़ जाता है। ये जैसे हमारे अंदर एक सोया हुआ ज्वालामुखी है
जो कभी भी फट सकता है।
बाप रे।
हाँ।
तो सवाल यह है कि इस अहंकार और इस पीड़ा शरीर के जाल से निकले कैसे?
यहीं पर वो प्रेजेंस वाली बात आती है।
एग्जैक्टली,
यहीं पर प्रेजेंस या वर्तमान क्षण की जागरूकता का रोल आता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने विचारों को देखना,
जैसे वो आ रहे हैं जा रहे हैं,
बिना उनमें उलझे,
सिर्फ देखना।
हाँ, साक्षी भाव से अपनी भावनाओं को महसूस करना, बिना उन पर तुरंत रिएक्ट किए। जैसे आसमान बादलों को देखता है ना, बस वैसे ही अपने मन की हलचल को देखना।
ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, पर करने में शायद मुश्किल है, क्योंकि मन तो लगातार सोचता रहता है, जज करता है।
मुश्किल लगता है शुरू में, हाँ, लेकिन टोली कहते हैं कि ये एक स्किल है जो अभ्यास से आती है।
अभ्यास कैसे?
वो कुछ तरीके बताते हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, या अपने शरीर के अंदर जो एक ऊर्जा है उसको महसूस करना। ये हमें फौरन सोच की दुनिया से निकालकर इस पल में ले आते हैं।
अपनी सांस या शरीर की ऊर्जा।
हाँ, और जब हम इस तरह जागरूक होना सीखते हैं, प्रेजेंट रहना सीखते हैं, तो धीरे धीरे अहंकार और पीड़ा शरीर की पकड़ ढीली होने लगती है। हम ये समझने लगते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जो इन सबको देख रही है।
वो चेतना,
हाँ, टोले कहते हैं हमारी असली पहचान जो है वो हमारे नाम, हमारे रूप, हमारी कहानी से परे है। वो निराकार है, शाश्वत है, वो हमारा होना है, बीइंग।
बीइंग, होना।
होना,
यहीं पर शायद वो रोल और गोल वाली बात आती है जो आज का हमारा फोकस भी है। टोले आंतरिक उद्देश्य और बाहरी उद्देश्य की बात करते हैं, ये क्या है?
हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। टोले कहते हैं कि हमारा जो आंतरिक उद्देश्य है, इनर पर्पस, वो सबसे जरूरी है, प्राइमरी है। और वो क्या है? वो है जागृत होना, अवेकन होना, यानी वर्तमान क्षण में जीना, अपने उस होने के साथ जुड़ना, ये हमारा असली काम है।
अच्छा, और बाहरी उद्देश्य?
हमारा बाहरी उद्देश्य, आउटर पर्पस, वो है जो हम दुनिया में करते हैं, हमारी भूमिकाएं, हमारे लक्ष्य, हमारा कामकाज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, हमारा रोल क्या है, हमारा गोल क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे कैसे करते हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा। जब हमारा आंतरिक उद्देश्य सद जाता है, मतलब जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जागरूक होकर काम करते हैं, तो हमारा बाहरी काम, हमारा आउटर पर्पस अपने आप सही दिशा ले लेता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। इसे टोले कहते हैं जागृत कर्म, अवेकन्ड डूइंग।
अच्छा।
अब आप चाहे कोई छोटा सा घर का काम कर रहे हो या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहे हो, अगर आप उस काम में पूरी तरह उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तो उसे करने के तीन तरीके हो सकते हैं।
तीन तरीके कौन से हैं?
पहला, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अगर काम मजेदार नहीं है, बोरिंग है, तो उसे बिना विरोध के, बिना शिकायत के स्वीकार करें।
दूसरा,
आनंद, एंजॉयमेंट। अगर हो सके तो काम में मजा लें, उसका आनंद उठाएं।
और तीसरा?
तीसरा, उत्साह, एंथुजियाज्म। अगर वो काम आपके किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा है, आपको पसंद है, तो उसे पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ करें। जब हमारा कर्म इस जागरूकता से आता है ना, स्वीकृति, आनंद या उत्साह से, तो वो बोझ नहीं लगता और उसका नतीजा भी अक्सर बेहतर होता है।
ये तो काम करने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। हम तो अक्सर भविष्य के गोल में इतने अटके रहते हैं,
हाँ,
कि जो अभी कर रहे हैं, जो हमारा रोल है, उसे या तो भूल जाते हैं या बस एक सीढ़ी मानते हैं उस गोल तक पहुंचने की।
बिल्कुल। जबकि टोले कह रहे हैं कि असली चीज तो अभी इस पल में आपकी चेतना की स्थिति है, आपका होना। और इसी व्यक्तिगत बदलाव से जुड़ी है नई पृथ्वी की सोच। ये कोई फैंटेसी वाली जगह नहीं है।
तो क्या है
ये? चेतना की एक नई अवस्था है, जब धीरे धीरे ज्यादा लोग अहंकार से मुक्त होंगे, जागरूकता में जीना सीखेंगे, तो अपने आप दुनिया में ज्यादा शांति, ज्यादा करुणा, ज्यादा समझ बढ़ेगी। ये बदलाव बाहर से थोपा नहीं जा सकता, ये अंदर से आएगा, हर एक व्यक्ति के भीतर से।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत के जो मुख्य संदेश हैं, उनको एक जगह करें, तो कौन सी बातें होंगी जो खास तौर पे ध्यान में रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से 3-4 बातें बहुत अहम हैं। पहली, कि हमारे ज्यादातर दुख और झगड़ों की जड़ हमारा अहंकार है, ईगो, जो कि एक झूठी पहचान है।
ठीक है।
दूसरी, हमारे अतीत का जो जमा हुआ इमोशनल दर्द है, वो पीड़ा शरीर या पेन बॉडी बनकर हमें बार बार नेगेटिविटी में खींचता है। और तीसरा, इनसे निकलने का रास्ता है वर्तमान क्षण में जीना, प्रेजेंस, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना, उन्हें बस देखना, साक्षी भाव से।
और चौथा, जो हमारे आज के फोकस, रोल और गोल से जुड़ता है।
हाँ, वो ये कि हमारा असली मतलब आंतरिक उद्देश्य है जागृत होना, और हमारे बाहरी उद्देश्य यानी हमारा काम, हमारी भूमिकाएं, हमारे लक्ष्य, वो तभी सार्थक हैं जब वो इस आंतरिक जागरूकता से जुड़े हों, जब हमारा करना हमारे होने से निकले।
ये बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में, खासकर जैसे भारत में, कैसे दिखती हैं? कुछ उदाहरण?
अरे बहुत तरीकों से। जैसे समाज में वो पद का, दिखावे का कितना प्रेशर होता है, लोग क्या कहेंगे का डर, ये सब क्या है? अहंकार ही तो है।
सही बात है।
या फिर ट्रैफिक में एकदम से गुस्सा आ जाना, ऑफिस के स्ट्रेस में खुद को बिल्कुल खो देना, ये सब क्या दिखाता है? कि हम उस पल में प्रेजेंट नहीं है, कट गए हैं।
और वो पारिवारिक झगड़े, जहां पुरानी बातें बार बार उठती हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगते हैं।
बिल्कुल। उसमें अक्सर दोनों तरफ की पेन बॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं, और फिर वो एक दूसरे को और भड़काती हैं। तो ये सिद्धांत सिर्फ किताबी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है।
हाँ, ये बात तो है। अच्छा, कुछ ऐसे यादगार विचार या कोट्स भी हैं इस किताब में जो सोचने पर मजबूर करते हैं?
हाँ, कई है। एक जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है, दुख का प्राथमिक कारण कभी भी स्थिति नहीं होती, बल्कि उस स्थिति के बारे में आपके विचार होते हैं।
मतलब हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में हो सकती है, अगर हम अपने विचारों को लेकर सजग हों।
एग्जैक्टली। ये कितनी बड़ी राहत की बातें हैं ना?
हाँ, बिल्कुल।
एक और गहरी बात, आप समग्र से अलग नहीं हैं, आपके पास जीवन नहीं है, आप जीवन हैं।
आप जीवन हैं।
हाँ, ये हमें उस एकता का एहसास कराता है जिसे अहंकार की वजह से हम भूल जाते हैं, कि हम सब उसी एक लाइफ एनर्जी का हिस्सा हैं। ये समझ हमें शायद प्रकृति के लिए, दूसरे इंसानों के लिए ज्यादा संवेदनशील बना सकती है।
और पर्यावरण को लेकर भी एक कोट था शायद?
हाँ, बहुत सटीक है वो। ग्रह का प्रदूषण केवल आंतरिक मानसिक प्रदूषण का बाहरी प्रतिबिंब है। लाखों बेहोश व्यक्ति अपने आंतरिक स्थान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं।
बाप रे, मतलब जब तक हमारे मन में लालच, गुस्सा, लापरवाही जैसे प्रदूषण हैं,
तब तक हम बाहरी दुनिया को कैसे साफ रख पाएंगे? अंदर और बाहर का कनेक्शन है ये।
सही कहा।
और एक चौथा, जो प्रैक्टिस की चाबी है, जिस क्षण आप विचारक अपने मन को देखना शुरू करते हैं, चेतना का एक उच्च स्तर सक्रिय हो जाता है।
अच्छा, मतलब जागरूकता की शुरुआत इतनी सिंपल है, बस अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करना है।
हाँ, बिना किसी जजमेंट के। और ये शक्ति हम सबके पास है, हर पल।
वाह, अब सबसे जरूरी बात, इन सब अच्छी अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, बिल्कुल। जैसे रिश्तों में, जब कोई बहस हो रही हो या कोई तनाव की सिचुएशन हो, तो एकदम से रिएक्ट करने या अपना बचाव करने के बजाय एक पल रुकें।
रुकें?
हाँ, बस एक पल, और अपने अंदर देखें, क्या ये मेरा अहंकार है जो बस सही साबित होना चाहता है, या ये मेरी पेन बॉडी है जो भड़क रही है और क्या मैं सामने वाले को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे वैसे ही स्वीकार कर सकती हूँ जैसा वो है? ये आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, पर जागरूकता पहला कदम है।
और काम की जगह पर, जहाँ अक्सर रोल्स और गोल्स का बहुत प्रेशर होता है,
वहाँ भी यही फंडा काम करता है। सिर्फ रिजल्ट पर या प्रमोशन पर, यानी गोल पर फोकस करने की बजाय, जो काम आप अभी कर रहे हैं, जो आपका रोल है, उसमें प्रेजेंस लाने की कोशिश करें।
कैसे? वो तीन तरीके?
हाँ, या तो स्वीकृति से करें, या आनंद से, या उत्साह से। और अपनी जो प्रोफेशनल पहचान है, जैसे मैं मैनेजर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, उसे ही अपनी पूरी हस्ती न मान लें। याद रखें कि आप अपनी नौकरी या पद से कहीं ज्यादा हैं। इससे शायद काम का स्ट्रेस कम हो और हो सकता है काम की क्वालिटी भी बढ़ जाए।
और रोजमर्रा के तनाव या चिंता के लिए?
जब नेगेटिव विचार आए तो उन्हें सिर्फ विचार की तरह देखें, उन्हें पूरी सच्चाई ना माने।
सिर्फ विचार?
हाँ, और फौरन अपनी सांस पे ध्यान ले जाएं या अपने हाथों में, पैरों में जो जीवन की एक सनसनाहट है उसे महसूस करें। ये छोटे छोटे एंकर हैं जो आपको मन की दौड़ से निकालकर वर्तमान में ले आते हैं, और वर्तमान में ज्यादा शांति है। तो मूल बात वही है, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति बस थोड़ा सजग होना, अलर्ट होना।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो शायद ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम उनसे बढ़कर हैं। हम वो शांत देखने वाली चेतना है जो इन सब के पीछे है, जो सब कुछ देख रही है। ये जानना ही अपने आप में एक फ्रीडम देता है।
और मेरे लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि हमारी व्यक्तिगत शांति, हमारा इनर पीस, और दुनिया में जो एक पॉजिटिव बदलाव हम लाना चाहते हैं, वो कितने गहरे जुड़े हुए हैं।
हाँ,
अहंकार से परे जाना सिर्फ एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये एक सामूहिक जरूरत है, कलेक्टिव नीड है। और खासकर ये समझना कि हमारा होना हमारे करने को कैसे प्रभावित करता है, मतलब हमारा आंतरिक उद्देश्य हमारे बाहरी रोल्स और गोल्स को कैसे दिशा देता है, ये बहुत ही अहम बात है। एक बेहतर दुनिया का जो निर्माण है वो सचमुच हम में से हर के अंदर ही शुरू होता है।
सचमुच। तो शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, अपने दिन भर के कामों और भूमिकाओं को देखें। क्या आप उनमें सिर्फ कर रहे हैं या अपने होने की जागरूकता के साथ कर रहे हैं? आपकी चेतना की स्थिति आपके बाहरी जीवन को कैसे रंग दे रही है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अलेक्ट्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।